ओम शांति। हम सब के बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी उपस्थित हैं। हम सब आपका करतल ध्वनि से एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने कार्यों की व्यस्तता में से विशेष हमारे लिए समय निकाल करके आप आई हैं, क्योंकि आप पर भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप वर्तमान समय ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, जो हमारा स्थान बना हुआ है, वहां की आप वर्तमान समय डायरेक्टर हैं और ज्ञान सरोवर में ही आप बेस्ड हैं। इसके साथ साथ अब एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी सेंटर्स हैं, उन सभी सेंटर्स की भी आप डायरेक्टर हैं, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी आप कार्यभार संभालते हैं। आपको यह ज्ञान मुंबई से मिला। मुंबई में 1962 में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। साकार बाबा और मीठी माँ जगदम्बा की पालना मिली और आप उस समय व्यवसाय से डॉक्टर थे, आप मेडिकल डॉक्टर हैं और आपने वहां ही मुंबई में ही काफी समय तक प्रैक्टिस की। 66 से लेकर 71 तक आपने मेडिकल प्रैक्टिस भी की और उसके साथ साथ आपने एक सेंटर भी, कांदीवली का जो सेंटर उस समय था पीस बिल्डिंग में, वो सेंटर संभाला जो आपके लौकिक पिताजी ने ही बना करके बाबा के यज्ञ में समर्पित किया था वो स्थान। एक अफ्लुएंट फैमिली से आप बिलोंग करते हैं कांदीवली की, लेकिन 71 में जब विदेश सेवाएं करने के लिए यहाँ इंडिया से ग्रुप गया था, कुछ भाई बहनों का, 5-6 भाई बहनों का, उस ग्रुप में, उस टीम में आप भी थे और काफी भाई बहन जो थे वो आ गए थे। जगदीश भाई थे, रमेश भाई थे, उषा बहन थे, रोजी बहन थे और आप भी थे, शील दादी भी थे। तो आप वहां ही रुक गए थे और 7 साल तक आप पहले लंदन में रहे कुछ वर्ष, उसके बाद यूके, साउथ अफ्रीका और मॉरिशियस में आपने अपनी सेवाएं दी और 78 तक आप ऐसे अपनी सेवाएं देते साउथ अफ्रीका इत्यादि में। फिर 78 में आप सिडनी में गए और सिडनी में काफी लंबे समय तक, जब तक कि आप ज्ञान सरोवर में, बाबा ने आपको यहाँ नियुक्त किया, आप ज्ञान सरोवर में आए। तो आप समझ सकते हैं कि अनेका अनेक सेंटर्स की सेवाओं को संभालते हुए अनेका अनेक अनुभव आपको मिले हैं, बेहद के अनुभव हैं। आपने विश्व के सभी कॉन्टिनेंट्स में सेवाएं दी हैं और आपके आपका जो रोल रहा है, आपने करीब 15 देशों में 72 सेंटर्स, 56 सब सेंटर और 4 रिट्रीट सेंटर स्थापन किए और उनकी सेवाएं आप करते रहे हैं। और आज बहुत ही सुंदर विषय आप अपने अनुभव के आधार पर हम सबके साथ शेयर करेंगे, संबंधों में व्यावहारिक कुशलता के ऊपर, संबंधों में व्यावहारिक कुशलता। तो मैं निवेदन करती हूं दीदी आपसे कि आप अपने अनुभव युक्त बोल से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय दीदी डॉक्टर निर्मला दीदी।
ओम शांति। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाए। साधु संन्यासी महात्मा घर बार छोड़कर चले जाते हैं कि हम घर में रहकर पत्नी बच्चों के साथ रहकर पवित्र नहीं रह सकते। पत्नी सामने है, ब्रह्मचर्य मुश्किल है। बच्चे सामने हैं, नष्ट मोह होना मुश्किल है। धंधा करते हैं, लोभ न करें, चोरी ठगी ना करें तो कैसे चलेगा। झूठ भी बोलना पड़ता है धंधे में, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया घर बार, नौकरी धंधा घर बार सब कुछ छोड़ दिया परिवार। परंतु बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि गृहस्थ में रहो और सब कुछ छोड़ो। सिर्फ शिक्षा नहीं देते हैं, शक्ति देते हैं, युक्ति देते हैं कि कैसे चलना है। घर में रहते हैं, सब तो ज्ञान में नहीं हो सकते हैं। हो सकता है पत्नी ज्ञान में हो पति न हो, या पति हो पत्नी ना हो। ज्यादातर तो बहनें ज्ञान में होती है, भाई नहीं होते हैं। पर कोई कोई परिवार में ऐसे भी है, भाई ज्ञान में है, बहनें नहीं है। तो साथ में रहकर साथी का सहयोग ना हो और पवित्र रहना, पढ़ाई करना, ये बाबा की मदद से ही हम कर सकते हैं। और तो युक्ति देते हैं, ऐसे नहीं कहो, यदि पति ज्ञान में नहीं, ऐसे नहीं कहो कि ब्रह्मा कुमारियां हमको शिक्षा देती है ब्रह्मचारी रहो, नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों में आने का पति बिल्कुल बंद कर देगा। इसलिए कहते हैं कहो हमको साक्षात्कार हुआ है भगवान का, भगवान ने कहा है ब्रह्मचारी रहो तो स्वर्ग में जाएंगे। तो हमारे पास मुंबई में एक माता थी, बहुत समय तक उसका युगल ज्ञान में नहीं था। तो उसने क्या बहाना किया कि कहा कि मेरे कमर में दर्द होता है, डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर ने कहा है कि ब्रह्मचारी रहो। अभी डॉक्टर कहता है, मानना पड़ता है आजकल। और कईयों को तो बहुत सहन भी करना पड़ता है ब्रह्मचारी रहने के लिए। माताओं को मारपीट सहन करनी पड़ती है, गाली सहन करनी पड़ती है। परंतु यदि हमारा योग बल है और दृढ़ता है तो हम विजयी बन सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी कई एग्जाम्पल है कि जिन्होंने दृढ़ रहे तो फिर पति पत्नी काफी टाइम अलग भी हो गए, माता को घर छोड़ के अपनी माँ के पास जाना पड़ा। एक बारी तो रात्रि को उसको सारी रात 10 बजे के बाद घर से निकाल देता है और कपड़े भी पूरे नहीं पहने और रात के ड्रेस पहना है, कैसे माँ के घर भी जाए। सारी रात छत में बैठी रही माता। जब सवेरे मुंबई में दूध वाला आता था उसके कारण पति ने घर खोला, चली गई घर में, परंतु वो दृढ़ रही योग में, पढ़ाई में, सेवा में। आखिर पति ज्ञान में आया और सेवा में भी साथी बन गया। मेरे साथ भी वो लड़ने आया पति, ये कौन से शास्त्र में बताया है कि घर में रहकर पवित्र रहो। मेरी युगल को आने नहीं दो। मैंने कहा कि देखो, हम तो शिक्षा देते हैं, चलना न चलना इन्हों का काम है, स्टूडेंट्स का। हमने देखा है उसे फायदे होते हैं और हमको ये शिक्षा मिली है। आपको आपकी पत्नी को नहीं आना देना है तो आप उसको रोको। ये तो मंदिर जैसा है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो हमारे साथ भी लड़कर थोड़ा बहस करके गया, आखिर ज्ञान में है। और एक भाई था, उसकी युगल नहीं ज्ञान में आती थी, तो उसने आपघात करने का प्रयत्न किया युगल ने। ट्रेन के पटरी पर जाकर सो गई, माचिस लेकर अपने आप को जलाने की कोशिश की, परंतु भाई अपने नियमों पर पक्का रहा, स्टडी और योग में नित्य आता रहा। आखिर वो भी आ गई ज्ञान में। तो ऐसे ऐसे होते हैं मिसाल, क्योंकि शुरू में आपने देख सुना होगा कितने विघ्न आए बहनों को, कुमारियों को, माताओं को, विशेष अमृतसर में, क्योंकि वहां से कुमारियां काफी निकली। और आप जानते हो पंजाबी लोग कैसे होते हैं, लड़ाओ, लड़ने में होशियार। तो बाप ने काफी त्रास दिया बच्चियों को, सवेरे क्लास में जाती थी तो घर में नहीं आने देते थे। और एक बाप ने तो बच्ची को घर में खटिया के पैर के नीचे उसका हाथ रखा और खुद बैठ गया खटिया के ऊपर तंग करने के लिए। परंतु बहने तो आती रही, सब विपदाएं सहन करते करते चलती रही, मेजोरिटी तो चलती रही। तो इसलिए युक्ति से या शक्ति से अपने नियमों पर चलना है। फिर भी क्या है, पवित्र रहने के लिए सहन करें, परंतु फिर भी ऐसे करना है कि यदि घर वाले ज्ञान में नहीं है तो माताओं को अपनी जिम्मेवारी निभानी है। टाइम पर उनको अच्छा खाना देना है, उनकी संभाल करनी है, क्योंकि आज बाबा ने हमें इतना प्यार दिया है, हमारी इतनी संभाल रखते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़े, परिवार की संभाल करनी है। ऐसे उनको ना लगे कि ये रोज चली जाती है सवेरे सवेरे, बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाई कराना ये नहीं कराती है। कंप्लेन कोई ना आनी चाहिए कि ये ब्रह्मा कुमारियों की शिक्षा कैसी है, जो घर संभालते नहीं है, बच्चों को संभालते नहीं है। क्योंकि विरोध तो अड़ोसी पड़ोसी सब करेंगे, वो भी कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी कहेंगे, देखो सवेरे हुआ सफेद कपड़े पहनकर चल पड़ी, बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाना उसका ख्याल नहीं है, तो ये उलहना ना मिले ये ध्यान में रखना है। तो बैलेंस रखना है, बाबा ने हमको बैलेंस रखना सिखाया है, लौकिक ड्यूटी और स्वसेवा। ऐसे ना, ऐसे भी ना हो कि हम अपना योग और मुरली मिस करें, तो लौकिक ड्यूटी भी संभालें। चलो सवेरे क्लास में नहीं जा सकते हैं, शाम को जाओ। और आजकल तो बहुत सहज हो गया है, टेलीविजन पर मुरली आती है, मोबाइल पर मुरली आ सकती है, तो इसलिए ये अपना स्टडी मिस नहीं करनी है, योग मिस नहीं करना है, अमृत वेला मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें तो कोई बाधा नहीं डाल सकते हैं ना। कई बार ऐसे भी होता है कि पति है, अमृत वेला उठने नहीं देता है, हमको डिस्टर्ब होता है, जल्दी स्नान करने नहीं देता है, कहता है हमको डिस्टर्ब होता है, बाथरूम में पानी आता है, तो कम से कम सोए सोए भी अमृत वेला कर सकते हैं, अंधेरे में भी योग कर लगा सकते हैं, या पथारी में बैठकर भी योग लगा सकते हैं। तो इसलिए ये देखना है कि युक्ति से चलना है, घर में अशांति भी ना हो तो अपना नियम भी चले, सवेरे नहीं जाओ दिन में जाओ, दिन में नहीं जाओ शाम को जाओ, पति है तब नहीं जाओ दिन में चले जाओ। तो इसी रीत से अपनी स्टडी करते रहो। दूसरा है कि भाई लोग है, अपना जॉब है धंधा है, उसकी भी संभालनी है, तो अपने परिवार को भी देखना है और पढ़ाई भी करनी है, ये देखना है। ऐसे भी नहीं कि बच्चे कहे कि हमारा बाप तो हमको क्या है कैसे पूछता भी नहीं, देरी से आता है जल्दी चला जाता है, क्योंकि हमारा तो 7 दिन का अभ्यास होता है, तो कम से कम छुट्टी के दिन बच्चों के साथ बैठना है, उनका हालचाल पूछना है, कभी घूमने ले जाना है। तो हमारे पास एक 25-30 साल का युवान आता था, शादीशुदा था, और 2 साल की बच्ची थी, उसकी वाइफ आई हमको कंप्लेन करती है कि ये हमको कहाँ भी घूमने नहीं ले जाता, बच्चे को घुमाने नहीं ले जाता है, सवेरे सेंटर पर चला जाता है, शाम को भी सेंटर पर चला जाता है, दिन में धंधा करता है। तो फिर हमने उनको राय दी भाई को कि भाई सवेरे स्टडी करो बाकी शाम को तो घर में टाइम दो, दोनों टाइम सेंटर को नहीं दो, जब परिवार है छोटा है बीवी ज्ञान में नहीं है उसको भी टाइम देना पड़े, क्योंकि यंग बीबी है और विदेश में तो मियां बीबी सब साथ में करते हैं, भोजन भी साथ में करेंगे तो टेलीविजन भी साथ में देखेंगे, तो क्लब में भी साथ में जाएंगे, पब में भी साथ में जाएंगे। तो इसलिए कहा कि चलो कम से कम शाम को तो घर वालों को टाइम दो, वीकेंड को बच्चों को घुमाने ले जाओ। तो इससे क्या होगा कि कम से कम बीवी खुश रहेंगी। और रेस्टोरेंट में जाओ, वो बोले खाए तुम न खाओ, क्योंकि वहां तो विदेश में तो चाहते हैं कि हम रेस्टोरेंट में भी खाए, घर में खा खा के थक जाते हैं और रेडीमेड फूड मिलता है तो खाने दो, उनको खाने दो, तुम नहीं खाओ। तो इसी रीत से बैलेंस रखना पड़ता है। फिर हमको बैलेंस रखना है, अपने शरीर की भी ध्यान रखनी है, आत्मा को भी खुराक देनी है। क्योंकि कई बार है कई माताएं इतनी बिजी होती है जो 4 घंटा भी रात को आराम नहीं करती, तो फिर लंबे समय तक चलने से फिर तंदुरुस्ती बिगड़ जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कम से कम 5-6 घंटा, चाहे भाई है चाहे बहन है, क्योंकि भाई भी नौकरी करते हैं, यदि 5 घंटा नहीं सोते हैं दिन में भी तो भाइयों को आराम नहीं मिलता है। तो कम से कम 5-6 घंटा रात को आराम करो और तो शरीर को भी जरा अच्छी रीत से खान पान दो, क्योंकि हमारा खाना ऐसा होना चाहिए बैलेंस, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मिनरल्स भी हो। अर्थात वैसे तो सलाद वगैरह खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना नेचर ने हमको दिया है कच्चा अच्छा ही है, परंतु वो भी संभाल करके खाना होता है, क्योंकि बारिश की सीजन में वो यदि ठीक तरीके से धोया नहीं तो उसमें कीड़े वगैरह आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है। तो इसलिए गर्म पानी से धुनाई वगैरह करना पड़ता है सलाद को, परंतु सलाद भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, रोटी सब्जी सब बैलेंस डाइट। तो भारत में तो संभव है, क्योंकि ज्यादातर माताएं काम नहीं करती, परंतु विदेश में नौकरी भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, सेवा भी करते हैं, तो इसलिए कभी कभी विदेश में मुश्किल हो जाता है। फिर भी बाबा कहते हैं कम से कम एक बारी तो पूरा खाना पकाओ और बाबा को भोग लगाओ। तो जो वेजिटेरियन घर है वो तो भोग लगाकर बाबा को भोग खिलाकर खुद खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन घर है लाचारी, तो उनको नेचुरली अपने योग में खाना पकाना है, योग में खाना खाना है, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर वालों को तो फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप वेजिटेरियन बनो। करके ऐसे कह सकते हैं कि आप पकाओ। विदेश में तो माताएं क्या कहती है, क्योंकि वहां तो माताएं भी काम करती है, तो क्या कहेंगी, आप पकाओ। या तो बच्चों को भी सिखा देती है। हमारे पास एक माता थी, 10-12 साल का बच्चा था, सिखा दिया कैसे पकाना है, आप ही पकाओ, आप ही खाओ, आप ही सफाई करो। वो बर्तन गंदे बर्तन, तो गंदे बर्तन तो अलग रखती है नॉन वेजिटेरियन का। तो इस सीरीज से थोड़ा युक्ति से चलना पड़ता है, पर यहाँ भारत में तो इतना बाहर का खाना घर वाले पसंद नहीं करते हैं और नौकर भी इतने होते नहीं हैं, तो इसलिए लाचारी हालत में पकाओ। तो कोशिश करो कि मांसाहार को हाथ भी नहीं लगाओ, ताकि अपना शुद्ध हाथ से बाबा को भोग लगा सकें। अभी मेन बात होती है बच्चों को कैसे संभालें। क्या है कि कई माताओं की या भाइयों की कंप्लेन होती है, गुस्सा आ जाता है, बच्चे चंचल बहुत है, बहुत दंगल मचाते हैं, नुकसान करते हैं। तो बाबा कहते हैं आंख दिखाओ पर गुस्सा ना हो, मारो मत, हो सके तो प्यार से समझाओ, उनको लालच देकर समझाओ, मारपीट नहीं करनी। तो बैलेंस बाबा कहते हैं लव और लॉ, प्यार भी करो उनों को, परंतु डिसिप्लिन भी सिखाओ। ऐसे नहीं कि वो जो करता है करने दो, डिसिप्लिन भी सिखाओ। तो हमारे पास एक माता थी, उसकी 6 साल की बच्ची थी, चंचलता करती थी तो उसको कमरे में बंद कर देते थे, चलो 15 मिनट तक तुमको बाहर नहीं आना है, चाहे कितनी भी चिल्लाए रोए दरवाजा खटखटाए, नहीं 15 मिनट तुम्हारी शिक्षा है, या तुमका आज फेवरेट ड्रेस नहीं मिलेगा, फेवरेट खाना नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, कृष्ण चंचल था तो उसको बांध के रखते थे। तो इसी रीत से कुछ सजा भी दो या कुछ टेम्पटेशन भी दो, और जितना प्यार से उनको समझाएंगे तो नेचुरली है समझ जाएंगे। क्योंकि जितना मारपीट करेंगे, फोर्स करेंगे, बॉसी बनेंगे तो क्या होगा, बच्चे उस समय तो शायद शांत हो जाएंगे और आज्ञाकृत बनकर चलेंगे, परंतु जब बड़े होंगे सामना करेंगे, और आप बूढ़े होंगे तो सामने भी नहीं देखेंगे कि आपने हमको कैसे संभाला है, कैसे बड़े किया है। अब ये आप बूढ़े हो, आप जानो, बूढ़ा घर जाने, तो बूढ़े घर पर छोड़ देते हैं। और कई तो ऐसे करते हैं कि बूढ़ा घर पर छोड़कर उसकी जो संभाल के लिए खर्चा देना होता है वो भी नहीं देते, छोड़कर चले जाते हैं, पूछते भी नहीं। तो इसलिए प्यार भी दो और संभालो भी गए। क्योंकि हमारे पास लंदन में एक करेबियन का युवान आया, मैंने उसको पूछा कि तुम परमात्मा को मानते हो, तो कहता है नहीं, मैं हिंदू के भगवान को नहीं मानता हूं। मैंने कहा क्यों, तो कहा देखो राम के हाथ में हमेशा तीर कमान, और क्राइस्ट देखो बीमार भेड़ बकरी को कंधे पर ले जाता है तो क्राइस्ट कितना दयावान है। मैंने कहा और कहा कि देखो हिंदू धर्म कैसा है। हमारी माँ ब्राह्मण को भोजन करने बुलाती थी, बच्चों को भूखे मरते, जब तक ब्राह्मण नहीं खाए बच्चों को खाना नहीं है, तो ऐसा कैसा धर्म है। फिर मैंने कहा तुम प्रार्थना वगैरह करते हो, कौन सा पिक्चर सामने रखते हो, तो कहा शंकर का। मैंने कहा अभी तो तुम कहता था हिंदू के भगवान को नहीं मानता और शंकर का पिक्चर रखा है, तो कहे भाई मैं यहाँ आता था लंदन स्टडी करने आया था तो मेरी माँ ने ये पिक्चर दिया था कि रोज सवेरे उसके सामने अगरबत्ती जलाना और नमन वंदन करना, इसलिए मैं करता हूँ। तो जैसे गांधी जी ने कहा ना, माताओं ने हिंदू धर्म विदेशों में चालू भी रखा है, जहां तहां बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर अपना धर्म चलाया है। तो जब हम प्यार से उन्हों को सिखाते हैं तो जरूर मानते हैं बच्चे। तो कल की मुरली ने बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा रहना है, तो ये भी देखना है कि न्यारा रहना है, मेरापन ना हो, परिवार से अपनी संपत्ति से घर से किसी से भी मेरापन ना हो, सब कुछ बाबा का है। और घर वालों को भी अलौकिक दृष्टि से देखना है, पति को भाई नहीं कहना है परंतु दृष्टि तो हमारी भाई भाई की होनी चाहिए। तो बोलने के लिए लौकिक रीति से बोलना है परंतु बुद्धि में अलौकिक संबंध रहे, तो लौकिक में भी अलौकिक ये रहे, तो प्यार भी रहे तो मोह भी ना रहे, मेरापन ना हो, न अधीन होना है न औरों को अधीन करना है, ये देखना है कि कोई हमारे पर डिपेंडेंट ना रहे, सबको सब काम करना सिखलाना। विदेश में तो ये बहुत अच्छा है, पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो पति भी रात को आकर बर्तन साफ करेगा, बच्चे बर्तन पोछेंगे, बच्चों को भी घर साफ करना सिखाते हैं कि कैसे हुवर चलाना है, कैसे सफाई करनी है, तो बच्चे भी मदद करते हैं और बच्चों को भी सारी शिक्षा देते हैं, अपने आप से जुड़ाव पहनना है, अपने आप से सब कुछ करना है, तो बच्चे भी इंडिपेंडेंट रहते हैं, बच्चों को भी माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है और भी माँ बाप के मददगार बनते हैं। तो इसी रीत से, क्योंकि इंडिया में तो क्या है कि सब कुछ माताएं करती है, बच्चों को चाय बनाने भी नहीं आती है, पति को चाय बनाने भी नहीं आएंगे, तो ये ना हो, बच्चे भी और पति भी, कभी खाना पकाना है कभी कुछ भी करना है कर सके। तो बाबा हमेशा कहते हैं बैलेंस, मधुर भी हो तो स्ट्रिक्ट भी हो, लव एंड लो का बैलेंस, मधुरता का और स्ट्रिक्टनेस का बैलेंस हो। कि ये भी हमारे परख शक्ति होनी चाहिए कि कभी लव से काम करना है, कभी लो से, कभी मीठा रहना है, कभी स्ट्रिक्ट रहना है। तो जितनी अपनी योग की शक्ति होगी, परखने की शक्ति होगी, तो उसी अनुसार हम रख सकेंगे। क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मीठा रहेंगे तो बच्चे कहेंगे चलो माँ बाप तो कुछ करने वाले नहीं हैं, तो दंगा फसल करते रहेंगे। और कभी जेब खर्ची लेंगे, गलत रास्ते उसका यूज कर सकते हैं आजकल तो, ड्रग्स वगैरह भी बहुत हो गया है स्कूलों में भी, एक दो से सीख कर कई कुछ करते हैं, कॉलेज में तो करते ही हैं, ये सीखते हैं तो सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि लेना। तो इसलिए बच्चों के ऊपर थोड़ी नजरदारी रखनी है। क्योंकि हमारे पास एक माता थी, परिवार था, सारा ज्ञान में था, पर बच्चे थोड़े छोटे थे तो रोज आते थे क्लास में, परंतु थोड़े बड़े हुए तो वो बच्चा लड़का था 14-15 साल का, ऐसे फ्रेंड सर्कल मिला तो स्कूल के टाइम में घर से जाता था परंतु स्कूल में नहीं जाता था, खेलता रहता था, पता नहीं क्या खेलता रहता था, क्या ड्रग्स लेता था, तो घर से भी चोरी करके ले गया सोने का चेन और हाथ का कंप्यूटर आदि आदि। तो फिर हमने माता को कहा भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो, उसको बोलो कि ठीक नहीं चलेगा, घर में नहीं रह सकता है, पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि माँ बाबा को भी ठग लेते हैं वहां विदेश में तो ठगते हैं, यहाँ तो मालूम नहीं है, परंतु वहां माँ बाप को भी ठगते हैं और यहाँ भी ऐसे है ना, क्योंकि यहाँ भी तो वहां की हवा लगती है। तो समझो ये भी नजरदारी रखनी पड़ती है बच्चों पर, कहाँ जाता है, किसके जात साथ जात जाता है, पैसा देते हैं, क्या करता है, क्या खर्च करता है आदि आदि, नहीं तो गलत मार्ग पर जल्दी संग के कारण संग का दोष लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा अटेंशन रखनी पड़ती है और स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो देखो बाबा क्या करते थे, गंभीर भी थे तो रमणीक भी थे। समझो ज्ञान योग के टाइम एकदम सीरियस के क्लास में टाइम पर आना है, अटेंशन से बैठना है, झूठ के नहीं खाना है, मुरली में अटेंशन खिंचवाते थे। और साथ साथ बच्चों के साथ खेलते थे, क्लास के टाइम क्लास, दिन के टाइम बाबा अपना पत्र व्यवहार करके, फिर कभी ताश खेलते थे, कभी चौपट खेलते थे, कभी कैरम खेलते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे, और प्रकाशमणि दादी भी ऐसे करती थी कि बीच बीच में कहेंगे चलो आज तो पीस पार्क जाना है, पिकनिक करें, आज पीस पार्क में मुरली सुने, अचानक सवेरे प्रोग्राम देंगे कि आज पीस पार्क जाना है, अचानक प्रोग्राम देंगे कि आज तो नकी लेक पर जाकर क्लास करना है। तो इसीलिए बच्चों को बहलाते भी थे, तो पढ़ाई के लिए योग के लिए स्ट्रिक्ट भी रहते थे। तो इसी रीत से हमें भी क्या करना है, बच्चों को बहलाना भी है, कम से कम उनको मूवी में नहीं ले जाओ, रेस्टोरेंट में ना ले जाओ, और पार्क में तो घूमने ले जा सकते हैं, जिस शहर के पास बीच होता है वहां भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लौकिक थे बंबई में तो हर संडे बीच पर जाना होता, लौकिक में तो हर सैटरडे हम लोग मूवी में जाते थे, पिक्चर में, कभी पिक्चर में, कभी म्यूजिक के कॉन्सर्ट में, कभी बॉक्सिंग दिखाने के लिए भी पिताजी ले जाते थे। तो समझो, और वेकेशन में हम लोग हमेशा पूना महाबलेश्वर माथेरान जाते थे। तो मतलब ये देखना है कि बच्चों को छुट्टियों में मनोरंजन भी कराना है, ताकि पेरेंट्स के साथ भी उनका अच्छा संबंध रहे। हम तो कहते हैं 16 साल के बाद लड़के को लड़का नहीं समझना है, फ्रेंड के रीति से रखना है, क्योंकि उसको लड़का समझ के हम दबाएंगे तो आजकल के बच्चे सामना करेंगे। इसलिए उनको फ्रेंड रीति से, प्यार से ऐसे संभालना है। तो जैसे कहा, डिसिप्लिन भी रहे और संभालना भी है। तो इसी रीत से देखना है कि घर गृहस्थ को हमें गृहस्थ आश्रम बनाना है, घर में शांति रहे, बल ज्ञान में परिवार वाले ना भी आवे, पर हम ऐसा चलें जो घर का वातावरण शांत रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, अशांति ना हो, हम खुद कभी गुस्सा ना करें, कोशिश करके बच्चों पर भी गुस्सा ना करें, घर वालों पर भी गुस्सा ना करें। आज भी बाबा ने कहा ना, शांत रहना है, कोई क्या भी करे, कुछ भी करो, हमको शांत रहना है, सिर्फ शांत नहीं रहना है, हर्षित रहना है, दुख भी नहीं लेना है, दुख देना तो नहीं है, दुख लेना भी नहीं है। तो इसी रीत से जो हमारा 21 जन्म का वर्षा है सुख शांति, और सब खजाने हमारे साथ है, तो भल स्थूल धन दौलत ना हो, परंतु ज्ञान और शक्तियों के खजाने हमारे साथ रहे। तो इससे क्या होगा, हम सदैव हर्षित रहेंगे, और भल हमारी कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइट रहे। जैसे देखो बाबा को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, इतने सेंटर्स, इतने बच्चे, सब बच्चे अपना हाल चाल लिखते थे, उनको जवाब बाबा देते थे, और कई बांधेलिया अपना बंधन का हाल चाल देते थे कि कितना हमको ऊपर सितम गुजरते हैं, फिर भी बाबा शांत रहकर उनको सकाश देते थे। मम्मा भी उनका सवेरे का समय योग का सकाश देने का था कि जिन बच्चों का समाचार आता था दुखी है अशांत है उनको सकाश देती थी। दादी जी को भी हमने देखा कि क्योंकि दादी जी के समय तो और भी बाबा के बच्चों की वृद्धि हो गई थी, कितने सेंटर, कितने देशों में सेंटर, परंतु दादी जी कितना लाइट, सदैव हर्षित, कभी चिंता नहीं। दादी जी सोती थी रात को 2 मिनट में नींद आ जाती थी, चिंता वालों को नींद नहीं आएंगी जल्दी। और हम पूछते थे दादी जी आप इतना हर्षित रहती है, इतना लाइट रहती है, तो कहा करानवन हार तो वो है ना, उसकी जिम्मेवारी है, ये तो बाबा की जिम्मेवारी है, हम तो निमित्त हैं। तो जितना निमित्त भाव रखकर, ट्रस्टी भाव रख के चलो जीवन में, ट्रस्टी भाव रख के चलो कि हम ट्रस्टी है, ये सब बाबा करावनहार है। तो जितना बाबा पर विश्वास होगा हम हल्के रहेंगे और निश्चय रहेगा कि हमारी विजय है। सहन तो करना पड़ता है, ज्ञान में आने से बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो परिवार का ही सहन करना पड़ता है कि परिवार वाले हमको अलग देखकर कहेंगे ये क्या, ये सब नई बातें कहां से सीख के आए। माँ बाप सासू ससुरा कहेंगे हमारे पास क्यों नहीं खाते हो, यहां हम शूद्र है, हरिजन है क्या हम लोग, सारी जिंदगी हमारे हाथ का खाया भी नहीं खाती हो, मतलब उनका सहन करना पड़ता है, समाज वालों का सहन करना पड़ता है, क्योंकि समाज भी विरोध करता है कि ये क्या, क्योंकि हम लोग तो हिंदू है परंतु मुस्लिम लोगों को तो और भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि परिवार वाले कहेंगे तुमने तो धर्म बदली किया। मलेशिया में तो हिजाब पहनकर बहनें आती थी तो रास्ते पर चलने वाले रुक गए, स्कूटर से आते थे रुक गए, क्या हमारे इस्लाम में कमी है जो तुम यहाँ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में जाती है। और गवर्नमेंट का भी विरोध है, मलेशिया में गवर्नमेंट भी कहती है कि आपकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में मुस्लिम को नहीं आने देना है। तो समझो सामना करना पड़ता है समाज वालों का, तो इतनी हिम्मत चाहिए। क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं कि भगवान का मार्ग है, हरि का मार्ग है, कायर का काम नहीं है, हिम्मत वाला चाहिए। तो ज्ञान में तो और भी हिम्मत चाहिए, तो इसलिए ये रखना है जितनी हमारी हिम्मत होंगी, दृढ़ विश्वास होगा, बाबा मदद करता है, ये जरूर है। निश्चय से हम जितना श्रीमद् का पालन करते हैं, बाबा की मदद जरूर है। तो इसलिए बाबा की मदद लेकर बाबा की शिक्षाओं पर प्यार से चलते रहें और कोशिश करके जितना भी हो सके परिवार में सुख शांति रखें। तो हमारा एग्जाम्पल देखकर सब खुश होंगे और कहेंगे जाओ तुम शांत है, तुम खुश है, जाओ। क्योंकि विदेश में तो जब शुरू शुरू में जवान भाई बहन आए ना, ज्ञान में शुरू शुरू में जवान भाई बहन आए, तो पहले तो माँ बाप को चिंता होती थी कि ये सिगरेट छोड़ा, शराब छोड़ा, गर्लफ्रेंड छोड़ी, पार्टियां छोड़ी, माँ बाप को चिंता हो जाती थी। पर पीछे देखा कि दूसरे बच्चे तो कार का एक्सीडेंट करके आते हैं, रोज शराब पी कर आते हैं, रोज कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, और ये तो शांत है। और भी पहले जो माँ बाप को पूछते नहीं थे, उन्होंने माँ बाप से अच्छा संबंध रखा, तो कहा जाओ भले। और एक तो भाई नहीं आता था तो माँ बाप कहे क्यों नहीं जाता है, तू जाता था तो शांत था, अभी नहीं जाता है गुस्सा करता है, जाओ। तो ऐसे होता है कि हमारा परिवर्तन देखकर खुश होकर घर वाले भी छुट्टी देंगे कि जाओ, और हमारी दृढ़ता देखकर एक न एक दिन वो भी आएंगे, जाएंगे कहाँ। बाबा कहते हैं यही एक दुकान है जहाँ सबको आना है, आगे पीछे कभी तो आ जाएंगे वो भी। तो इसलिए हमें इस मार्ग से विचलित नहीं होना है, बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है, श्रीमद् का हाथ भी पूरा पकड़ के रखना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवन के, जो आपने अनेक स्थानों पर अनुभव किए हैं, वो अनुभव जरूर हमें हमारे जीवन में भी लाभ देंगे और हम इनसे लर्न करके जरूर बाबा के इस ज्ञान को अडॉप्ट और अच्छी तरह से करके अपने जीवन को भी बनाएंगे। बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर नेबरा देवी। एक मिनट साइलेंस में।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यार।